ना जा रहे क्या?
नहीं नहीं नहीं
हाँ जी कोई कंकड़ पत्थर आ रहा हो है? रास्ता चलते चलते कंकड़ पत्थर कांटे आ जाते हैं तो रुकावट आती है, है? तो कोई आ रहा हो तो बताओ,
बांदेली माता क्लास में आई और उनके पीछे उनके युवक और किसी और को लेकर अभी नीचे आ गए थे बाबा। तो बांदेली माता को बाबा क्लास में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए?
बांदेली माता बट्टी कर चुकी है,
बट्टी तो कर चुकी है,
बट्टी कर चुकी है, उसके घर वाले परमिशन देते हैं तो आए, परमिशन नहीं देते हैं तो पूर्व जन्मों में उसने अच्छे कार्यों में उनको विघन डाला होगा, परमिशन नहीं दी होगी तो घर वाले अपना हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। उसे समझना चाहिए कि हमारा हिसाब किताब पूरा हो रहा है, हम हल्के हो रहे हैं।
लेकिन बाबा जैसे माता हमको ऐसा बोलते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बाबा का भी नाम बदनाम होता है,
है?
और फालतू में लड़ाई झगड़ा हो जाता है,
है?
फिर वो माताएं मानती नहीं है,
है?
वो माताएं तो मानती नहीं है बाबा,
है?
वो बोलती है क्यों? ये भी तो अपनी मर्जी से कहीं कहीं जाता है,
है?
तो मैं क्या बाबा की क्लास में नहीं जा सकती?
जिस समय हथियाला बांधा था उस समय पंडित के सामने तुमने ये कहा था कि हम स्वतंत्र होकर के रहेंगे, नाक में नथनिया नहीं डालेंगे, है? हाँ, उस समय अंजाम किया था ना, इसका हम सहयोग करेंगे, ये जैसे चलाएगा वैसे चलेंगे। बाकी ये मन को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो बाबा ने मन को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस हमको सिखाई है। वो तो जितना ज्यादा बंधन होगा उतना मन ज्यादा भागेगा, तो भाग्य हमारा ज्यादा बनेगा कम बनेगा? कोई तन को कंट्रोल में रख सकता है, मन को तो कोई कंट्रोल में नहीं रख सकता। मान लो पति तन के ऊपर जबरदस्ती करता है विकार भोगने के लिए, मन बाबा की याद में उड़ा दो, तन को मुर्दा बना दो, तन मुर्दा बन गया, मन बाबा की याद में ऊपर उड़ गया, तो मन जहां नहीं लगेगा वहां विकारी सुख तो भोगा नहीं जा सकता। विकारी सुख भोगेगा ही नहीं तो पाप कर्म बनेगा ही नहीं। जो जोर जबरदस्ती करेगा तन के ऊपर उसका पाप बनेगा, लेकिन मन को जिसने उड़ा दिया, तन को मुर्दा बना दिया, उसका कोई पाप बनेगा ही नहीं। और ही पाप कर्म भस्म होंगे बाबा की याद में और तीव्र गति से याद आएगी। जिसके ऊपर अत्याचार होते हैं ज्यादा दुख आता है उसको भगवान की ज्यादा याद आती है कम याद आती है? ज्यादा याद आती है। और प्रैक्टिकल में भगवान आया हुआ हो तो और ज्यादा याद आएगी। तो माताओं को तो बांदेली माताओं को तो घुप खग्गियां मारना चाहिए, बाथरूम में जाके डांस करना चाहिए। बाबा आते हैं तो बाबा को साकारी समझ रखा है कि निराकार भी है? बाबा को अगर हम याद करेंगे तो निराकारी स्टेज में अव्यक्त स्टेज में बाबा हमारे साथ नहीं रह सकता, ऐसी भी स्टेज आएगी। और बांधेली माताओं की पहले आएगी कैसी स्टेज, कि वो बांधेली माताएं या बांधेली कन्याएं बाबा को साकार में अपने अनुभव करेंगी अपने साथ। अभी भी बहुतों को स्वप्न में बहलाता रहता है।
कलम लगाता हूँ आदि सनातन देव जी धर्म में, कहीं बोला मैं बीज बोता हूँ, बीज बोला कलम अलग अलग
कहीं बोला है मैं बीज बोता हूँ,
कलम लगाता हूँ,
कलम लगाता हूँ वो ठीक है, बीज बोता हूँ मैं शिव बीज बोता है ये तो नहीं बोला।
मैं ज्ञान का बीज बोता हूँ,
शिव ऐसे नहीं बोलेगा कि मैं बीज बोता हूँ। शिव मनुष्य सृष्टि का बीज है, शिव को मनुष्य सृष्टि का बीज कहे है? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि मनुष्य सृष्टि साकार है और मनुष्य सृष्टि का बीज भी साकार में होना चाहिए। शिव को मनुष्य सृष्टि का बीज नहीं कहेंगे तो वो ये कह भी नहीं सकता कि मैं बीज वहां बोने के लिए आता हूँ। हाँ हाँ कलम लगाता हूँ। कलम कैसे लगाता हूँ? पुराना वृक्ष है, पुराना वृक्ष पूरा बढ़ गया, जब पुराना वृक्ष पूरा बढ़ गया तो अंत में जाके कलयुगी स्टेज आ गई या कोई दूसरे युग की स्टेज है, तामसी स्टेज वाला वृक्ष हो गया। हर धर्म तमो प्रधान हो गया या सतो प्रधान है? हर धर्म की आत्माएं तमो प्रधान हो गई, उन तमो प्रधान डालियों में से कटिंग की और कटिंग करके नए ब्राह्मण धर्म की कलम लगा दी। 76 में क्या किया? 76 में जितने भी थे बीके में ब्राह्मण, वो और धर्मों के थे कि कोई सूर्यवंश के थे? और धर्मों के थे। माने वो कलम काट ली और 76 के बाद कलम लगाना शुरू कर दी। पहले पहले चार मुख्य धर्मों की कलम लगाई, चार मुख्य बीज रूप आत्माएं पकड़ी और उनके द्वारा नई सृष्टि का संचालन शुरू हुआ, नया संगठन बनना शुरू हो गया। तो ये कलम लग गई। जो पुरानी पुरानी डालियां ली जाती हैं वो तमो प्रधान होती है। वो तमो प्रधान डालियों में से तीन डालियां जो हैं वो और धर्मों की हैं, एक डाली सनातन धर्म की है। तो सनातन धर्म की डाली से सनातन धर्म के वृक्ष तैयार होगा, और धर्मों की जो डालियां हैं उनसे और धर्मों की कलम लगती है। इसलिए नीचे झाड़ में दिखाया गया है कि सब धर्मों की जड़ों का आरोपण होने लगता है, फाउंडेशन पड़ रहा है। ऐसे नहीं कि अभी ब्राह्मणों की दुनिया में सिर्फ एक कुल के ब्राह्मण तैयार हो रहे हैं, एक धर्म के लोग तैयार हो रहे हैं, नहीं, सब धर्मों का फाउंडेशन पड़ रहा है। जो पक्के पक्के श्रीमत को मानने वाले हैं, ज्ञान सूर्य को फॉलो करने वाले हैं, वो सूर्यवंश का फाउंडेशन लगा रहे हैं, सूर्यवंश के निमित्त बन रहे हैं। जो उस बात को पूरा नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं और नहीं चलते हैं, तो और धर्मों का फाउंडेशन लगाने के निमित्त बन जाते हैं। तो जो और धर्मों का फाउंडेशन डालने के निमित्त बन जाते हैं वो ब्राह्मणों में फर्स्ट नंबर कुरी के अधिकारी बनेंगे या और प्रकार के जो ब्राह्मण हैं नीची कुरी के उनके फाउंडर बनेंगे, नीची कुरी के ब्राह्मण बनेंगे। तो शास्त्रों में और समाज में ब्राह्मणों की 9 कुरियां मानी जाती हैं। दुनिया में भी जो भगवान को मानने वाले हैं वो 9 धर्म मुख्य मुख्य हैं जो झाड़ में दिखाए गए हैं। अभी उन सब का फाउंडेशन पड़ रहा है। सूर्यवंशी तो मुट्ठी भर निकलेंगे, फाइनल पेपर होगा, सब डिक्लेयर होने लगेगा। इसलिए मुरली में बोला है अंत में आठ राजाइयां ब्राह्मणों की दुनिया में स्पष्ट दिखाई देंगी। नौवा बाद में स्वयं प्रत्यक्ष हो जाएगा,
छुपा रुस्तम
बाद में खोले। जो सच्चे ब्राह्मण होते हैं वो सच्चे ब्राह्मण यहाँ ब्राह्मणों के संगठन में अपनी राजाई चलाते हैं, है? राजाएं राजाई चलाते हैं, ब्राह्मण राजा नहीं होते। ब्राह्मण क्या होते हैं? ब्राह्मण तो सेवाधारी होते हैं। ब्राह्मणों को दूसरों के ऊपर कंट्रोल नहीं करना, ये काम करो नहीं करोगे अच्छा हटो, या उनके ऊपर शासन करना या उनको दंड देना, ये ब्राह्मणों का काम नहीं है। ब्राह्मणों का काम है बाप को फॉलो करना। बाप आया है बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट बन करके, तो हम बच्चों को भी क्या बनना है, हम भी कोई बात माने या न माने, सेवा करे या न करे, बैठे बैठे खाता रहे, हमें क्या करना है, हमें तो उनकी सेवा करनी है। कैसा भी है भगवान का बच्चा है, भगवान के बच्चों को हम दंड देने के अधिकारी नहीं है, उनके ऊपर शासन करने के अधिकारी नहीं है, प्यार से चलाना है। तो कौन से धर्म की स्थापना होगी, है जो ईश्वर सत धर्म स्थापन करता है वो ही सतयुग की स्थापना होगी, और धर्मों की स्थापना नहीं होगी।
तो बाबा ब्राह्मण जो सेवाधारी होंगे वो राजा नहीं बनेंगे,
यहाँ राजा बनेंगे, यही राजा ही ले लेंगे तो वहाँ राजा ही कम हो जाएगी। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में संगम युग में किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करना है, ज्ञान सुनाते रहो, जब तक ज्ञान सुनते हैं उनको सुनाते रहो। शिव बाबा को 70 साल से ऊपर हो गए सुनाते सुनाते, कभी नाराज होता है बच्चों के ऊपर, है अभी भी प्यार का सागर है, पहले भी प्यार का सागर था, किसी को कोई दंड तो नहीं देता कि धर्मराज को, धर्मराज इधर आओ इसको संभालो, धर्मराज को तो नहीं सौंप देता, प्यार ही देता है ना। तो प्यार के सागर के हम बच्चे भी प्यार से ही सब बच्चों के साथ आचरण करें, ऐसे धर्म की हम स्थापना करने के निमित्त बने। जो ऐसा नहीं करते हैं, बीके में क्या हो रहा है, है क्या हो रहा है, हमारी बात मानो तो ठीक। अच्छा तुम शंकर पार्टी की बात करो, कान पकड़ के बाहर है, बात ही नहीं करेंगे, तो ये राजा ही चलाना नहीं हुआ है। ये भगवान का घर बनाया या आसुरी दर बनाया, ये तो आसुरी दर बन गया, आसुरी धर्मों की स्थापना कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि एडवांस का एडवांस ज्ञान में नहीं है, ऐसे एडवांस ज्ञान में भी ऐसे ही चलने वाले बहुत हैं, क्या प्यार से चलाने वाले बहुत थोड़े हैं। 5 पांडवों को दिखाया है, 5 पांडव भारतीय थे या विदेशी थे, हैं? 5ों पांडव भारतीय थे, परंतु 5ों में सबसे जास्ती सहन शक्ति वाला कौन था, युधिष्ठिर, जो ज्ञान का युद्ध है, सच्चाई का युद्ध है, उसमें स्थिर रहने वाला, कोई के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करते थे, धर्म युद्ध में स्थिर रहते थे। तो ये भी धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। और
सूर्यवंशी आत्मा ही वहाँ रहेंगी माउंट आबू, और धर्मों की आत्मा ही रहेंगे क्या?
किसी के माथे पे लिख दिया है कि तुम और धर्मों के हो, किसी के माथे पे लिखा हुआ है? तो आप किसकी वकालत कर रहे हैं? आप और धर्मों की वकालत कर रहे हैं ना।
वकालत और धर्मों नहीं, पूछे सारे धर्मों की आत्मा ही होती
है। अभी आई हुई है ब्राह्मण में, जो ब्राह्मण बैठे हुए हैं उसमें सभी धर्मों के बैठे हुए हैं। अब फाइनल पेपर होगा तो पता पड़ जाएगा कौन पक्के स्वधर्मी है और कौन नंबरवार विधर्मी है। स्वधर्मी होंगे वो स्वर्ग की स्थापना के निमित्त बन जाएंगे प्रैक्टिकल में।
नहीं बाबा, इनका प्रश्न ये नहीं है, इनका प्रश्न ये है कि माउंट आबू में सभी धर्मों की आत्माएं जाएंगी या केवल सूर्यवंशी जाएंगे, इनका प्रश्न ये है।
तपस्या जो करेंगे वो तपस्या करने का अधिकार सभी धर्म वालों को है या सिर्फ सूर्यवंशियों को? ये सब जाएंगे, सबको मौका दो।
तपस्या
सबको तपस्या करनी है, तपस्या करने का मौका तो सभी को देना चाहिए। तप कर राज, राज कर नरक। तपस्या करो तो राजा ही मिल जाएगी है, बढ़िया बढ़िया सेंटर स्थापन हो जाएंगे, उनमें चक्कर लगाते रहो, ज्ञान सुनाते रहो, तामसी बन गए तो राजा ही उड़ जाएगी। अभी ब्रह्म कुमारियों का क्या देखने में आ रहा है, उनकी राजाई सेंटरों में से उड़ रही है या जम रही है? जैसे उनकी राजाई उड़ रही है ऐसे ही फिर आगे हमारा भी हस्त्र होगा। बल कितनी भी तपस्या करें, तपस्या करके पवित्र बने, जितनी जितनी तपस्या करते जाएंगे आत्मा पवित्र बनती जाएगी, उतना आपका संगठन मजबूत मजबूत होता जाएगा। हर आत्मा में अपनी अपनी दुनिया बसी हुई है, एक एक आत्मा में अपने अपने 84 जन्मों के कनेक्शन में आने वाली आत्माओं का संगठन बैठा हुआ है। तो संगठन यहाँ प्रत्यक्ष होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हर एक आत्मा जितनी जितनी पवित्र बनती है तपस्या करके, उतना उतना राज्य भाग यहाँ मिलता जाएगा। राज्य भाग मिलेगा फिर क्या होता है? राजभाग के बाद फिर क्या होता है? ये नियम बना हुआ है, अहंकार आता है। जो कुर्सी पे बैठता है उसको फिर अहंकार आता है। हाँ, कोई यह है किसी को कम अहंकार आता है, किसी को ज्यादा अहंकार आता है। कोई ज्ञान में इतना रमण करता है कि अपने अहंकार को कंट्रोल करके रखता है, और कोई फिर खुला छोड़ देते हैं घोड़े को, मनमानी करने लग पड़ते हैं। प्रभुता पाहि काहि मदनाहि, किसी को कुर्सी मिल जाती है, प्रभुता मिल जाती है, मद आ जाता है, अहंकार चढ़ जाता है, फिर मनमाना काम करने लग पड़ते हैं। तो मनमाने आचरण से फिर क्या होगा? फिर नीचे गिरेंगे। फिर नीचे गिर गए, अपवित्र बन गए, पापी बन गए, फिर जाकर के माउंट आबू वहां तपस्या करने का सबको स्वतंत्रता देंगे या नहीं देंगे? है? देंगे। जो तपस्या करेंगे उनको स्वतः ही वरदान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, इसमें नाराज होने की बात ही नहीं।
बाबा, मेरे बचपन से जैसे जो आत्मा है जिसे ढकेल रही है, वो अभी भी ढकेल रही
है। जो
बचपन से देख रही हूँ मेरे अंदर जो मुझे आत्मा है अलग तरह से धकेल रही है, मैं पवित्र होना चाह रही हूँ, वो अखिलता की तरह धकेल रही है, वो अभी भी इस वक्त भी है।
भूत प्रेत आत्मा है?
पता नहीं बाबू, मैं ऐसे नहीं जानती, पर मन ऐसा लगता है कि 4-5 है मेरे अंदर।
तो आत्मिक स्थिति में रहो, जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं उनके ऊपर सूक्ष्म सर्वधारियों का असर नहीं होता है। अमृत वेले उठ करके खूब प्रैक्टिस करो। अब धर्म युद्ध तो है, उनसे लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। जो भूत प्रेत आत्माएं हैं वो आसुरी आत्माएं हैं, पाप कर्म करने वाली आत्माएं हैं। पाप कर्म ज्यादा करती है तो उनको अकाले मौत होती है, या तो उनकी हत्या होती है या तो वो सुइसाइड कर लेती हैं, आपघात करती हैं। तो ऐसी पापात्मा जो है उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है, सूक्ष्म शरीर के लेकर के वो भटकती रहती है, जिनसे जिनसे हिसाब किताब है उनसे हिसाब किताब पूरे करती रहती है। तो उसका तरीका हमें बाबा ने बताया है कि वो तो सूक्ष्म शरीर है उनको, क्या शरीर माने देह अभिमान, सूक्ष्म देह अभिमान। हम अपने को बिंदी समझेंगे, स्टार समझेंगे, तो हमारे उस समय देवान है ही नहीं, वो हमारी प्रवेश कर ही नहीं सकता। कोई भी जिसमें भूत प्रेत प्रवेश किया हुआ हो, उसकी आंखों में आंखें डाल करके बाबा की याद में उसे देखो स्टार को, वो भाग जाएगा, पावरफुल होगी तो हमको कंट्रोल करेगा। इसलिए प्रैक्टिस करो, आगे चल करके ढेर की ढेर अकाले मौतें होनी है, जमीन हिलेगी, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें सब गिरेंगी, कितने लोग रही पड़े हैं उनमें, बिल्डिंगें गिरेंगी तो अकाले मौत होंगी तो ये सब आत्माएं भूत प्रेत बन जाएंगी, एक एक में ढेर ढेर आत्माएं प्रवेश करेंगी, तब क्या करेंगे, उनके आधीन हो जाएंगे। इसलिए अभी से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्या प्रैक्टिस, सवेरे सवेरे उठते उठते दूसरा कोई संकल्प नहीं, स्टार को याद करना, स्टार को देखना, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने से क्या नहीं हो जाता है, वो गीता में भी लिखा है, शास्त्रकारों ने भी लिख करके रख दिया, अभ्यास इंद्र कौनते है, अभ्यास करने से ही आत्मा जो है स्थिर हुआ जा सकता है।
नहीं, आज नहीं
सोना,
आज
तो
बिल्कुल ही नहीं
सोना,
बाबा
आए आज,
जब
जाके कंट्रोल हुआ बाहर जाके भगे हैं।
तो हारिए
नहीं हिम्मत, बिसारिए न राम। जैसे अमृत वेले के समय उठते हैं, उठ करके आत्मा को देखने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आत्मा की जगह बाबा दिखाई दे, बाबा और बाबा की बात आए सामने,
हाँ,
बाबा का चेहरा, बाबा की बातें, मुरली की बातें,
हाँ, तो खराब चीज है क्या?
नहीं खराब नहीं है, हम हाँ, पूछ रहे हैं बाबा, हाँ, जैसे बाबा बोलते हैं ना, उठते ही बस आत्मा ही देखनी है, और अगर आत्मा की जगह बाबा दिखाई दे तो अच्छी बात है ना बाबा।
तो खराब बात इसमें क्या हुई?
खराब बात की बात नहीं पूछ रहे,
अच्छी बात तो है,
अच्छी बात है।
हाँ जी, हाँ जी, माने आत्मा से बाबा घटिया है या बाबा ज्यादा अच्छा है?
अच्छा है बाबा, हम ये जानना चाहते हैं बाबा,
बाबा अच्छा है, बाबा जो है बिना आत्मिक स्थिति के तो याद आ ही नहीं सकता। सुबह से शाम तक ईश्वर की सेवा में ही रहेंगे तो सेवाधारी बच्चों को बाप खुद याद करता है, तो जिन बच्चों को बाप खुद याद करता है उनकी आत्मिक स्थिति बनेगी या नहीं बनेगी? आत्मिक स्थिति तो सेवाधारियों की बन ही जाती है। फिर जहां अपन को आत्मा समझ लिया तो आत्मा समझने वालों को परमात्मा असली आराम से याद आता है। आत्मा समझ करके बाप को, परमात्मा को याद करो, अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बिना आत्मा समझे अगर याद करेंगे तो कठिनाई होती है। और
गीता पाठशाला में विशेष सेवा के लिए वो भाई थोड़ा इमोशनल है, सारी बातों में संतुष्ट हो गया। एक सवाल था उसका कि जो कसाई बकरे को काट रहा, तो बकरों ने ऐसा पाप कर्म किया कि उनको कटना पड़ रहा है, ये बोला कि ड्रामा में अरे कर रहे हैं, लेकिन वो ड्रामा में पाप जाए, लेकिन उन्हें इमोशनल था वो रोने लगे, तो बकरे कटते हैं, बकरों ने ऐसा क्या पाप कर्म किया कटना पड़ रहा
है? बकरे तो थोड़े हैं, मछलियां कितनी है ढेर सारी, बकरे तो कम लोग खाते हैं, मछलियां तो सारे संसार में जितने भी विधर्मी है सारे ही मछलियां खाते हैं, कितनी मछलियां कटती रहती हैं। अरे उन मछलियों को अपना हिसाब किताब बना हुआ है, उनका स्वभाव है, मछली मछली को खा के जिंदा रहती है, क्या? एक मछली बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, उससे बड़ी मछली उसको खा जाएगी, जो मगरमच्छ है सब बड़ी बड़ी मछलियों को खा जाएगा। तो उनको तो कटना मरना रोज का है जिंदगी का, उनके लिए कोई खास बात नहीं है। नाली के कीड़े हैं, जो नाली के कीड़े हैं वो एक दूसरे को काटते रहते हैं, वो उसको काटेगा। काटना और कटना और दुखी होना और परेशान होना ये उनका धर्म है। उन कीड़ों को निकाल करके नाली में से साफ स्वच्छ जगह में धूप की रोशनी में रख दो और ज्यादा तेल मिलाएगा। उनका अपना धर्म, बिच्छू का अपना धर्म, वो काटेगा ही काटेगा। धर्मात्मा का अपना धर्म। अरे पहले अपनी जाति को तो देखना है, अपनी जाति की मेंटेलिटी को पहले परखना है कि दूसरे की जाति को मेंटेलिटी को पहले परखना है। मनुष्य तो पहले सुधरे, मनुष्य सुधर जाएगा तो दूसरे प्राणी भी सुधर जाएंगे।
बाबा, आपने मुरली में बोला कि देवता तो समझदार होते हैं, लेकिन मुरली में तो बोला कि देवताएं बुद्धू भी होते हैं।
अभी देवताएं हैं या मनुष्य हैं? अभी क्या है? है? अभी जो भगवान को पहचान ले, जो देवता बनने वाली आत्मा अभी भगवान को पहचान ले, लेकिन अभी देवता तो नहीं है, क्या है? मनुष्य है। तो ऐसी मानवीय बुद्धि जो भगवान को पहचान ले, वो बुद्धू है या समझदार है या बेसमझ है? हाँ, तो अभी देवता नहीं है हम। सत्युग में जो देवताएं होते हैं वो कुछ भी नहीं जानते। अभी भी जो देवात्माएं हैं, जो मुरली को सीधा सीधा पकड़ती हैं, उसके गहरे अर्थ को नहीं पकड़ पा रही हैं, वो देवात्माएं हैं। ब्रह्मा बाबा के साथ जन्म लेने वाली हैं या संगमयुग में देवता बनेंगे? ब्रह्मा बाबा के साथ जन्म लेंगे तो वो बुद्धू है या बुद्धिमान है? तो ब्रह्मा सरस्वती जैसी जो आत्माएं अभी ब्राह्मणों की दुनिया में काम कर रही हैं, वो वास्तव में देव आत्माएं हैं। उनको देव आत्माएं कहेंगे। क्या देवताओं का भी जन्म देने वाले कोई बाप हैं? क्या वो कैसे हैं? वो बड़े बड़े राक्षस भी हैं और बड़े बड़े देवता भी हैं। वो ईश्वर की क्वालिटी के हैं, भगवान की क्वालिटी के हैं। साकार भगवान की जो क्वालिटी है वो उसके बच्चों की क्वालिटी है। इसलिए गीता में लिखा हुआ है कि भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूत प्रेत योनि में जाते हैं, देवताओं की पूजा करने वाले ब्रह्मा सरस्वती को जो मानने वाले हैं वो देव योनि में जावेंगे, और जो मेरी उपासना करते हैं वो मेरे को प्राप्त होते हैं। तो मेरे को कौन सी युग में प्राप्त होते हैं? संगम युग में मेरे को प्राप्त होते हैं। जो मेरे पीछे पड़ते हैं, किसी देवात्मा के पीछे, किसी धर्मात्मा के पीछे, किसी धर्म पिता के पीछे नहीं पड़ेंगे। किसके पीछे पड़ेंगे? किसको फॉलो करेंगे? एक बाप को फॉलो करेंगे। वो ऊंचे थे ऊंचे हुए। वे देवताएं तो बुद्धू ही होते हैं।
बाबा, देवड़ा मंदिर जो
है
जिसका नाम बताते हैं बाबा, एक जैसे देवड़ा मंदिर को बनाया और उसका जो वेस्टेज बचा
है,
वेस्टेज जो बचा पत्थर वगैरह बाबा, उससे मजदूरों ने एक छोटा सा मंदिर अलग से बनाया बाबा उस वेस्टेज से। तो बोलते हैं कि उसके कारण इसका नाम देलवाड़ा मंदिर पड़ा, उन मजदूरों की यादगार के लिए इसका नाम देलवाड़ा मंदिर पड़ा।
मतलब
जैसे जो मंदिर
वेस्टेज बचा
जो बचा, तो मजदूरों ने क्या कहा कि इसकी तो हमने राशि ली है, मतलब ये मंदिर जो बनाया उसकी तो हमने कीमत ली है, लेकिन ये जो हम बना रहे हैं इस वेस्टेज का, ये हम अपनी यादगार छोड़ने के लिए जो वेस्टेज पत्थर है बचा बुचा, उससे उन्होंने बिना पैसे लिए एक छोटा सा मंदिर अलग से तैयार किया। बताते हैं कि उसके
कौन सा मंदिर है, कहाँ है?
वही देवगढ़ मंदिर नहीं है,
देवगढ़ मंदिर के पास बना हुआ,
अंदर ही बाउंड्री के अंदर ही
बाउंड्री के अंदर बना हुआ है,
काफी बड़ा बना रखा
था वो।
तो वो बताते हैं इसलिए इसका नाम देवगढ़ मंदिर पड़ा, क्योंकि उन्होंने इतना दिल लगा करके और बिना कुछ मजदूरी लिए इस चीज को वेस्टेज से तैयार करके खड़ा किया।
ठीक है,
तीन
तपस्या करने वाले तपस्या कर रहे हैं दिलवाड़ा मंदिर में, और जो तपस्या कर रहे हैं उनमें प्रवेश होकर के उनको ताकत देने वाली आत्माएं इंस्पिरेट कर रही है, प्रेरणा दे रही है, तो प्रेरणा देने वाले भी हैं और तपस्या करने वाले भी हैं, दो तरह की आत्माएं हैं अभी जो दिलवाड़ा मंदिर में मंदिरों में दिखाई गए, छोटी छोटी मंदिरों में, एक तो प्लानिंग पार्टी और दूसरी इंस्पिरेटिंग पार्टी, प्रेरणा देने वाली पार्टी, बाकी मजदूर नहीं है क्या? इंजीनियर ग्रुप है और मालिकों का भी ग्रुप है, लेकिन जो मकान बनाने वाले मजदूर हैं वो अभी नहीं है। प्रैक्टिकल पार्टी, वो प्रैक्टिकल पार्टी भी अंत में आएगी क्या, और वो भी कंस्ट्रक्शन करेगी, वो दिल वाले हैं, दिमाग वाले नहीं है, इसलिए उस मंदिर का नाम दिलवाड़ा मंदिर है, उन्होंने दिमाग नहीं लगाया।
हम भी ये सोच रहे थे बाबा, जो मजदूरों वाली बात आई
हाँ जी,
वो उस हिसाब से आई होगी।
हाँ जी हाँ जी,
सूक्ष्म आत्मा ही करते हैं,
कभी बुद्धि एकदम डल हो जाती है, समझते हैं क्या सुनाएंगे, कभी बुद्धि में बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट आने लगते हैं, कोई व्यक्ति सामने आता है तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ जाने कहां से ज्ञान निकल पड़ता है, तो इसका मतलब कोई इंस्पिरेट कर रहा है ना, कोई प्रेरक है ना।
अब दिलवाड़ा मंदिर में ज्यादा सेवा हो रही है बीकेज की।
हाँ जी हाँ जी, होगी ना,
मंदिर के अंदर घुस जाते हैं बाबा,
हाँ।
बनाकर हम लोग,
हाँ।
और फिर उनको अलग अलग पकड़ लेते हैं।
हाँ जी हाँ जी,
और अच्छे से बड़ी बड़ी बहनों की भी सेवा हो रही है बाबा ने।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो पॉइंट बार बार उनको दिखाओ, मुरली का मुरली, जो ओरिजिनल मुरली छपी हुई पुरानी कागज है ना, माउंट आबू का छपा हुआ, उसमें वो वाक्य दिखा दो बार बार, कौन सा कि अभी तुम बच्चे, या वो तो तुम्हारी यादगार बनाई है दिलवाड़ा मंदिर, अभी तुम प्रैक्टिकल में तपस्या में बैठे हो, तो प्रैक्टिकल में तपस्या में दिलवाड़ा में कौन बैठे है, कौन बैठने वाले है, वो क्या रिजल्ट आ रहा है देखने में, वो पी के तो नहीं बैठे हैं दिलवाड़ा में, कौन बैठे हैं और कौन बैठने वाले हैं, क्या आसार नजर आ रहे हैं, कौन बैठेंगे, जो करेंगे सो भरेंगे।
यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा और सीता वाली आत्मा ने ब्रह्मा ज्ञान में जन्म लिया,
सीता वाली आत्माएं एक नहीं है, सीताएं दो हैं, रावण का विनाश करने के लिए जब राम हिरण के पीछे पड़े उससे पहले उन्होंने सीता के दूसरा रूप बनाया, असली रूप को योगाग्नि में बैठा दिया। तुम पावक में करो निवासा, तुम याद में बैठ जाओ, कुछ मत करो। क्या ज्ञान व्यान की भी तुमको दरकार नहीं, तुमने असली स्वरूप को देख लिया, जान लिया, समझ लिया। तुम पावक में करो निवासा, याद में रहो। और एक मूर्ति सोने की बना दी, उसको रावण उठा ले गया। तो दूसरी मूर्ति कौन सी बनाई गई? पंच तत्वों की बनाई। तो पांच तत्व कौन से हैं? प्रकृति, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश। ये जड़ तत्व से बनी हुई जो सीता है वही जगदम्बा है। उसको जब तामसी रूप धारण करती है, क्या माया मृग के पीछे दौड़ती है, श्रीमत की लीका को उल्लंघन करती है, तो तामसी बनने के कारण रावण उसे उठा ले जाता है। तो दो सीताएं हैं। कौन सी सीता की बात कर रहे
हैं? लक्ष्मी जन्म देगी ना,
हाँ,
दूसरे नंबर की सीता होगी।
वो दूसरे नंबर की सीता है,
ओरिजिनल सीता है ना।
हाँ हाँ, जो पावक में निवास करने वाली है वो नारी से डायरेक्ट लक्ष्मी बनने वाली है, जो जीवन का लक्ष्य है, बाबा ने दिया है। और जो वहाँ प्रिंस बनेगी, पहले बच्चा बनेगी किसी का, फिर लक्ष्मी बनेगी, तो डायरेक्ट प्राप्ति लक्ष्य की नहीं करती है, इसलिए वो नंबर दो में है। और
बहुत मूल्य में
आजकल बीके वाले जो पर्चे बहुत बांटते हैं, तो वो भी मतलब आपके बारे बाबा के बारे में वही बाबा आया हुआ, वो लिख रहे हैं सिर्फ बाबा आया हुआ, उनसे पूछते हैं कहाँ, तो ब्रह्मा बाबा को बताते हैं। तो हमारे काफी दिनों से ये जिज्ञासा हो रही है कि हम आपसे पूछ करके वो पर्चे बटवाए।
पर्ची बांटने से भगवान प्रत्यक्ष हो जाएगा?
नहीं, उनको थोड़ा सा नॉलेज में तो आया कि हाँ परमात्मा आया हुआ है, तो वो कहाँ है?
ऐसे लोग आपके कहाँ है कहने से मान जाएंगे?
पूछेंगे तो हम उसके बारे में बताएंगे, बाबा के बारे में कि आया हुआ है। जैसे ये लोग कहते थे हमारा बाबा,
सच्चा पर्चा तो परिचय देना है,
पर्चा तो देते हैं, लेकिन
वो पर्चा बांटने से कुछ होगा नहीं। तुम चार छह आठ दस पंद्रह को पर्चा बांट पाओगे? असली पर्चा तो एक एक को बैठ करके उसको परिचय दो, समझाओ, बैठ बैठ के माथा मारो। परिचय बुद्धि में बैठ जाएगा तो पर्चा सच्चा साबित होगा। और पर्चा ऐसे ही बांट दिया और अपने घर में जाके बैठ गए,
तो
उनको फॉलो करना जरूरी है।
उनसे मोबाइल से बात करके उनसे बात करें परमात्मा के बारे में, मतलब आपका सच्चा परमात्मा कहाँ है, आया हुआ है तो वो कहाँ, जैसे
बोलियों
में लिखा हुआ है।
ब्रह्मा कुमारी से बात करेंगे?
हाँ,
ब्रह्मा कुमारी तुमसे बात ही नहीं करेंगे, वो जान लेंगे कि ये पीपी के है, वो तो फोन ही बंद करके रख देंगे।
नहीं, हमने अभी दो तीन दिन पहले सेवा की थी ब्रह्म कुमारियों की, और हमने धीरे धीरे करके कि हम जानते नहीं है, बताओ आप, और फिर हमने आप बतलाया कि भाई परमात्मा, अरे हम तो ब्रह्मा बाबा फॉलो करते हैं।
तो आपकी मेहनत का रिजल्ट क्या निकला?
फिर हमने ये भी कहा कि अगर आप उस परमात्मा को मिलना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो सीढ़ी के माध्यम से आप उनका सच्चाई जानो, सच्चाई। बोले हाँ हाँ ले लेंगे हम बाद में, जब जरूरत होगी
इसलिए बाबा ने हमको बताया है कि जिनको तुम परिचय दो और थोड़ा सा परिचय दो, वो तुम्हारी तरफ खींचे चले आए, तुम्हारे पीछे पीछे फिरे सुनने के लिए, वो तुम्हारे कुल के हैं। पहले अपना घर का सुधार या पर का सुधार? तो जो हमारे अपने घर के हैं, हम उनको न सुना है, हम उनके पीछे फालतू, हम जानते हैं कि वो हमारी बात सुनने वाले नहीं है, वो हमारे कुल के नहीं है, ऐसे ही हमारा माथा खपाएंगे और हमारी बात समझते हुए भी नहीं समझेंगे, वो फिर भी कुमार का दादी को फॉलो करेंगे।
लेकिन हमें माउंट आबू पे नक्की जी पर ये पहने मिली, उनसे हम लोगों ने, जैसे इन्होंने रेखा माता ने हमने बात की, तो वो तुरंत खींची चले, हमने सुना
सुना, फिर उसके बाद
सुना फिर बाहर से आई, बाहर से आई और लेकर गई बाबा, लिटरेचर लेकर गई है, एड्रेस पूछ कर गई है।
वो ब्रह्मा कुमारियाँ नहीं है सरेंडर,
नहीं सरेंडर नहीं बाबा,
ये तो सरेंडर ब्रह्मा कुमारी जो पर्चा छपाती है उनकी बात कर रही है।
हाँ
वो गृहस्थी है, गृहस्थी लोगों को परिचय देना फिर भी ठीक है।
हाँ उन्होंने स्वीकार किया,
तो जो हमारी बात को सुनते हैं प्यार से धारण करते हैं उसको सुनो, जो सुनते ही नहीं उनको अब माथा पच्ची करने से क्या फायदा है, हमारे धर्म के नहीं है, छोड़ दो।
निमित्त बनकर बट्टी के लिए लेके जाते हैं और बट्टी करने के बाद मान लो वो कम्प्लीट होता है, बट्टी के पास में कोई गांव होता है उनका, कोई गांव की वहां की रहने वाली होती है जैसे जयपुर में रह रही है, और बट्टी के लिए हम ले गए, बट्टी कराने के बाद में वो कहती है भाई हम गांव जाकर के फिर जयपुर आएंगे, तो इसमें कोई वो तो नहीं कि उनको छोड़ना चाहिए या वापस जहां से चले वहीं तुरंत लेके आना चाहिए बट्टी करने के बाद।
करने के बाद कोई कहीं भी चला जाए, क्या बंधन में रखना है?
नहीं बंधन नहीं, मतलब जिस स्थान से रवाना होते हैं तो उसी स्थान
पे, वो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं होती, भट्टी कर ली फिर चाहे जाए उड़ो।
बच्चे को अपन भट्टी के लिए लेके जाते हैं, नाबालिग बच्चे को,
नाबालिग बच्चों में एक समझदार होते हैं एक बेसमझ बच्चे होते हैं, बेसमझ को भी ले जाने में कोई हर्जा तो नहीं है लेकिन शैतान नहीं होना चाहिए।
दोबारा करनी पड़ेगी
18 साल का, तो जब ज्यादा समझदार होंगे तो वो अपने आप अपना निश्चय पत्र लिखाना चाहेंगे।
जैसे अभी माउंट में साधुओं की जो गुफाओं में साधु रहते हैं ना,
है
जो गुफा में साधु रहते हैं, उन साधुओं की भी सेवा चल रही है बाबा, चार पांच साधु सुन रहे हैं, तो चार पांच साधुओं ने जब सुना बाबा तो वो एक अपने बड़े उनको लेकर आए, ये आप इनको भी बताइए ये हमारे साथ ऐसा ऐसा करते हैं, मतलब जैसे बाबा बोलता है ना अहंकार वाली बात है, तो बाबा उस बड़े को समझाने के लिए किस तरीके से समझाया जाए, छोटे तो मान गए हैं और सुन रहे हैं बाबा की सिंधी भी सुन रहे हैं, लेकिन जो उनका मुखिया है बाबा, माना कम से कम बताते हैं वो 500-600 साधुओं के ऊपर अध्यक्ष है बाबा,
जो बड़े आदमी होते हैं उनको मान मर्तबा ज्यादा होता है, उनके सामने निरहंकारी होकर के समझाना पड़े, कोई भी बात बोलते हैं तो इस तरह बोले कि जैसे हम छोटे हैं ये बड़े हैं, माने हमारी बात तो भी ठीक और न माने तो भी उनकी उनकी जीत करनी है, तो वो खुश होकर के सुनते रहेंगे। अगर हमने ये अपने को साबित कर दिया कि हम गुरु हैं तुम्हारे,
ऐसा
तो नाराज हो
जाए, ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि वो भी बड़े बड़े वो हैं उनके नीचे आदर्श के नीचे, तो उनको भी बाबा वो गंगा को लेके बहस हो गई, उनसे बहस नहीं मतलब हमने प्यार से समझाया बाबा, जो बाबा ने हमें बताया
गंगा तो उनकी अम्मा है।
वो बोलते हैं तुमने गंगा को माँ कैसे बोला, गंगा तो माँ है ही नहीं,
गंगा मैया क्यों कहते हैं फिर?
हाँ हमने बोला बाबा, हमने कहा फिर आप लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, हम तो नहीं बोलते, हमने कहा आप हमें बताइए कि वो माता कैसे हुई।
गंगाधर जो ईश्वर है ना, उस गंगाधर ने उसको अपने सर माथे पर रखा हुआ है, इतना प्यार करता है, इतना धरौना तो किया है गंगा का, जैसे एक होती है ओरिजिनल पत्नी और एक होती है धरौने में लाई हुई, तो क्या जो धरौने में लाई हुई है वो ज्यादा होशियार और ज्यादा सेवाधारी नहीं हो सकती है? ज्यादा सेवाधारी होती है तो प्यार में आकर के उसको सर के ऊपर भी चढ़ा लेते हैं, तो उसको सर के ऊपर चढ़ाया हुआ है।
तो बाबा फिर जब वो ज्यादा बहस करने लगे तो हमने उनसे कहा ठीक है महाराज जी हमें आप एक हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, और बोले बोलिए, हमने कहा गंगा का शांतनु क्या लगता था, अरे अरे वो तो छोड़ो छोड़ो वो तो थोड़े समय की बात थी, मैंने कहा थोड़े समय की क्यों बात थी, उनके 8 पुत्र भी हुए थे, वो कैसे हुए अगर वो माता नहीं थी तो बाद में बाबा वो हाथ जोड़ के कहता मैं मान गया माता तुम माई तुम कौन है, ब्रह्मा कुमारी तो हो नहीं सकती, ज्ञान तो तेरा ब्रह्मा कुमारी जैसा लग रहा था, पर अब तो लगता है तू शिव की कुमारी है। मैंने कहा शिव की कुमारियां नहीं होती है, शिव के तो बच्चे होते हैं पुत्र होते हैं। तो फिर बाबा वो तब से इतना हुआ बाबा रेगुलर, मैं नहीं पहुंचती ना बाबा कोर्स कराने के लिए तो फोन करके बुलाते
कि आप आए नहीं हो अभी तक, और उन्होंने फिर आसपास के और साधुओं को इकट्ठा किया।
तो 500-600 का ग्रुप वो भट्टी करे तो आप समझ लो कि यहाँ पक्का हो गया।
500-600 तो नहीं, लेकिन वो 4-5 तो तैयार हो जाएंगे बाबा।
अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी,
4-5 की तो बात कर रहे हैं बाबा।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बनाना पड़े नहीं, बना देंगे। आगे चल के ऐसा भी होगा कि कोई क्रिश्चियन को भी राष्ट्रपति बना देंगे।
क्या प्रभाव पड़ेगा
है?
अगर क्रिश्चियन राष्ट्रपति बन जाए उसके बाद क्या होगा?
उसके बाद क्या होगा?
विनाश का कुछ नहीं हो जाएगा।
और क्रिश्चियन से नास्तिक बनते हैं, और नास्तिकों को अगर राष्ट्रपति बना के बैठा दिया जाएगा तो सत्ता का अंत ही निकट आ गया ना।
बोले मुरली में बोला तुम सब सीताएं हो, तुम सब द्रौपदी हो। अभी दो सीता बताई
है?
अभी जब आपने
कोई चीज होती तो नंबर वार होती है कि सब नंबर वन नंबर दो होते हैं? तो नंबर वन और नंबर दो भी कोई होगी, फिर कोई नंबर तीन भी होगी, नंबर चार भी होगी, नंबर पांच भी होगी, नंबर बढ़ते ही चले जाएंगे। तो बाबा के सामने जितनी बैठी हैं वो सब क्या हैं? वो सब सीताएं हैं। क्या टोटल मिला के सबका शीतल स्वभाव है, उग्र स्वभाव जितना बाबा का है उतना किसी का नहीं हो सकता। तो शिव बाबा तो गर्म है, सूर्य है, और बाकी सब सितारे सूर्य के मुकाबले शीतल है। तो तुम सब सीत माने सीताएं, और राम एक है, राम है एक और सीताएं हैं अनेक, तुम सब पार्वतियां हो।
बाबा एक माता भक्ति करके आई और अच्छी ज्ञान में चल रही थी, और इसके बाद में वो बिल्कुल टूट गई, आती नहीं क्लास में भी नहीं आती है, फोन करो तो फोन भी नहीं उठती, युगल उनके मिलने नहीं देती।
तो देवता बनने के बाद कोई कन्वर्ट नहीं होता? तो क्या हुआ? नई बात क्या है? ढेर के ढेर ज्ञान लेते, ढेर के ढेर ज्ञान लेते हैं, ढेर के ढेर देवता बनेंगे, देवता से फिर नीचे गिरेंगे, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे।
बाबा जब वो आएगी तो भक्ति करेगी?
कौन?
वो माता जिसके कह रहे हैं।
हाँ, जो अब जो टूट जाते हैं, बाबा कहते हैं कोई दो महीने चिट्ठी नहीं लिखता, कोई कनेक्शन नहीं है बाबा से, तो बाबा क्या समझेंगे? मर गया, मर गया तो मर गया, और वो वर्ष दो वर्ष आता ही नहीं है, मरने वाले की तो वर्ष ही मनाई जाती है, अब वो आता ही नहीं है, वर्ष दो वर्ष हो गए, तो फिर दोबारा गर्भ में जाना पड़े कि नहीं जाना पड़े? बाप का बच्चा बनना पड़े कि नहीं बनना? बिना गर्भ में जाए कोई बाप का बच्चा बनता है? गर्भ में तो जाना पड़े, वो सात दिन की भट्टी, एक दिन आना एक दिन जाना, नौ दिन ज्ञान में पकना पड़ेगा।
मैंने कैसे
जो आप कैसेट दे के आए वो सुनती है?
वो कैसेट भी सुनती है और योगी करती
है, कागज की मुरली भी पढ़ती है? हाँ, तो थक गई, इसीलिए आपने अंदर बैठ करके ज्यादा संघर्ष क्यों करना? हमारा तो सहज राजयोग है, सहज मिला है सो दूध सम, मांग लिया सो पानी, और पति से खींच खींच के ले लिया दुख दे दे करके, और तो खून हो गया, इसलिए वो आराम से शांति से बैठी है घर में, बाबा को याद करती है, मिल जाती है तो मुरली पढ़ लेती है, सुन लेती है, आप फिर तो उसको दे देते रहिए।
तो किसी माताओं को वापस से भक्ति करना जरूरी है?
नहीं, जब आपको मालूम है कि वो लगातार मुरली पढ़ रही है, सुन रही है, बाबा को याद कर रही है, है कोई दूसरों से प्रभावित नहीं है, तो आप उसे भट्टी करने के लिए क्यों ऐसे इस तरह क्यों बोलेंगे, जबरदस्ती मार देंगे जिंदा आदमी को।
लेकिन से वो बराबर याद करती है।
आप मुरली दीजिए, आप मुरली दे करके देखिए घर में, आप उसको आपको आप घर में जाकर के दे करके तो आइए।
नहीं, वैसे कुछ नहीं आपसे, कि मान लो कि वो पढ़ सकती है, सिर्फ देख भी ना सके और ऐसे कैसे करा के सुन भी ना सके, सिर्फ पढ़े
तो वो ही तो मुरली है।
हाँ जी,
बाबा मैं ये कह रही थी कि जैसे कि सब लोग सबके घर जान नहीं सकते
हैं,
जैसे कि अभी आप यहाँ आए तो सभी लोग मतलब किसी का भी घर जान नहीं सकते हैं, मतलब कि आम बात नहीं है ये कि मैं सब सबके घर पहुंच जाए, तो जब आप आते हैं तो कोई ऐसी एक जगह निश्चित रखी जाए कि मैं सब वहाँ आराम से पहुंच जाएंगे, मतलब किसी को परेशानी भी ना हो
और
किसी भी भी भी
को कोई को तो दूर पड़ेगा ही,
दूर पास की बात नहीं
बाबा।
मतलब कि सब लोग इजीली वहाँ पहुँच जाए
बाबा, उसका तो एक ही वो हो सकता है मधुबन,
मधुबन बाबा
एक ही जगह निश्चित विलास
जयपुर में मधुबन बने।
अब जैसे मैं आज आई, मैंने मतलब विनोद भाई को फोन किया, बहुत देर तक मतलब कम से कम 5-7 मिनट फोन किया, खड़ी गई मैं सर्किट जाके, लेकिन फोन लगा नहीं, मैंने फिर वो दीपक भाई को भी फोन लगाया, उनको भी नहीं लगा, मैं वापस घर तक पहुँच गई, फिर विनोद भाई का फोन आया, फिर मैं वापस वहां सड़के तक आई, फिर ये मुझे लेके आई, तो ऐसे मतलब कि आकर के भी नहीं आए। तो
मान लो इसी मकान में मधुबन बन जाए तब आप क्या करेंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? और बाबा ने मुरली में बोला हुआ भी है, गीता पाठशाला को मधुबन का नक्शा बनाओ, क्या जो भी गीता पाठशाला है उनको लक्ष्य दिया हुआ है, क्या कि गीता पाठशाला चलाने वाले ये लक्ष्य रखे हैं कि हमारा घर क्या बन जाए, मधुबन बन जाए, तो आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? चलता रहता
वो अच्छी तरह बता
एड्रेस,
है
एक दूसरा सहयोग तो करता ही है।
उनका मतलब है एड्रेस हमें नहीं मालूम था, बाबा कहाँ पहुँच रहे हैं
सूचना लगे ना, तो भी क्लास छोड़ के मुख्य परेशानी की फोन आता है।
आपको किससे मालूम पड़ा कि बाबा आए हुए हैं? इनसे मालूम पड़ा तो उसी समय इनको पकड़ लेते कि हमें एड्रेस बताओ, या तो उस गीता पाठशाला का फोन नंबर दो।
ऐसी स्थिति है कि ये थोड़ा बड़ा अजीब सा रास्ता है बाबा इधर पहुंचने का, बहुत ही कोई पहली बार में तो बिना किसी जानकार के आ नहीं सकता बाबा इधर
झोटवाड़ा में।
नहीं, ये जो जगह पहली बार आए, ये फैक्ट्री एरिया है बाबा, इसके रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े हैं बाबा, बाकी और कहीं भी सब पहुंच जाते हैं, पर यहाँ आने के लिए यहाँ आके भी भूल जाते हैं बाबा।
इसीलिए तो यहाँ सबसे बाद में प्रोग्राम रखा है।
लेकिन बाबा शहर की थोड़ी प्राप्ति होती है, टेढ़े मेढ़े से प्राप्ति भी है, नांगलवाड़ी बस तो अंडे ही उतारे अपने, वो जानकारी की बात है।
बाबा जयपुर में भी मधुबन का होना चाहिए ना बाबा, बाबा जयपुर में भी मिनी मधुबन होना चाहिए ना बाबा?
चाहिए चाहिए, ऐसे थोड़ा ही कुछ होता है
बाबा, बताइए ना उसके लिए
क्या बताइए,
क्या क्या चाहिए?
सहज
कोशिश करेंगे ना बाबा,
सहज मिले सो दूध सम, एक एक से मांग लिया तुम थोड़ा सा चंदा दो, तुम थोड़ा सा चंदा दो, तुम्हारे पास बड़ा मकान है, तुम्हारे पास दो मकान है, एक मकान तुम दे दो, ये तो मांगना हो गया।
हम ये जानना चाहते हैं अगर बाबा दो तीन कमरे ही मिले और एक छत मिल जाए तो ये काम हो सकता है बाबा?
अगर मगर से थोड़े काम हो
नहीं बाबा, ऐसा राय
पूछ रहे
मान लीजिए है अगर ऐसा तो ये काम हो सकता है बाबा?
अगर ऐसा हो तो अगर ऐसा स्वर्ग ही न बन जाए।
अच्छा मान लीजिए बाबा है ऐसा
है,
मान लीजिए है ऐसा।
कैसा है?
ये तीन कमरे और एक छत मिले हमें,
हाँ
तो शुरू हो सकता है बाबा?
तीन कमरे हैं एक छत है तो उसको थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, उसमें क्या बड़ी बात हो गई?
छत को हॉल बनाया जा सकता है बाबा?
हाँ
छत को हॉल बनाया जा,
हाँ छत का हॉल बनाया जा सकता है। कोई दूसरा मकान वाला निकल आएगा तो बड़ा मकान दे ऑफर कर देगा आगे। बाबा ने बोला आगे चल के जी विक्टोरिया भवन है वो भी तुमको दे देंगे सेवा करो आगे, क्या बड़ी बात है?
बाबा हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं बाबा परमिशन देंगे या नहीं देंगे।
चलो